डैनियल की पुस्तक संख्या 54। अंतिम दिनों का अनावरण, डैनियल की समझ की खोज। हमने हाल ही के एक लेख का समापन प्रॉफिट्स एंड किंग्स के एक अंश के साथ किया, जहां बहन वाइट ने ये दर्शाया कि डैनियल ये समझने का प्रयास कर रहा था कि यिर्मयाह के द्वारा पूर्व कथित 70 वर्षों की बंधुआई का संबंध उन 2300 वर्षों से क्या है, जिनके विषय में उसने दर्शन में एक स्वर्गीय दूत को ये घोषित करते सुना था कि परमेश्वर के पवित्र स्थान की शुद्धि से पहले वे बीत जाएंगे।
एक और दर्शन के माध्यम से भविष्य की घटनाओं पर और अधिक प्रकाश डाला गया, और इसी दर्शन के अंत में डैनियल ने ये सुना। एक पवित्र जन बोल रहा था, और दूसरे पवित्र जन ने उस विशिष्ट पवित्र जन से जो बोल रहा था कहा, ये दर्शन कब तक रहेगा? डैनियल 8:13। जो उत्तर दिया गया, 2300 दिन तक, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। पद 14, उसने उसे उलझन से भर दिया। उसने गंभीरता से दर्शन के अर्थ की खोज की। वो यिर्मयाह के माध्यम से पूर्वकथित 70 वर्षों की बंदीगिरी का उन 2300 वर्षों से संबंध नहीं समझ सका, जिनके विषय में उसने दर्शन में एक स्वर्गीय आगंतुक को ये घोषणा करते सुना था कि वे बीतने के बाद ही परमेश्वर के पवित्र स्थान का शुद्धिकरण होगा। स्वर्गदूत गब्रियल ने उसे आंशिक व्याख्या दी, तथापि जब भविष्यद्वक्ता ने ये शब्द सुने, ये दर्शन बहुत दिनों तक रहेगा, तो वो मूर्छित हो गया। मैं डैनियल मूर्छित हो गया, वो अपने अनुभव के बारे में लिखता है, और कुछ दिनों तक बीमार पड़ा। बाद में मैं उठ खड़ा हुआ और राजा का काम किया, और मैं उस दर्शन से चकित था, पर किसी ने भी उसे नहीं समझा। पद 26-27, भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं, फात 56।
मिल्लवादी उस मौलिक संदेश की पूर्ण समझ तक कभी नहीं पहुंचे जिसे उन्होंने घोषित किया था। जब वो समय आया कि यहूदा के गोत्र का सिंह 7 समय के विषय में और जानकारी प्रदान करना चाहता था, तो वे लाओदिकिया अनुभव में प्रवेश कर गए और 7 वर्ष बाद 7 समय के प्रकाश को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। वे 70 वर्षों और 2300 वर्षों के पूर्ण संबंध को कभी नहीं देख पाए, जिसे समझने के लिए डैनियल ने गंभीरता से प्रयास किया था। डैनियल अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है। भूमि द्वारा अपने सप्त मनाना उस वाचा का हिस्सा था जो प्राचीन इज़राइल को दी गई थी, जिसमें हर 7वें वर्ष भूमि को विश्राम देने की व्यवस्था शामिल थी। उस वाचा में 7 वर्षों का चक्र 7 बार दोहराए जाने का प्रावधान भी था। इसमें 7-7 वर्षों के 7 चक्रों 49 वर्ष के अंत में जुबली कहलाने वाले उत्सव के दौरान संपत्ति और दासों की मुक्ति तथा पुनर्स्थापन भी शामिल था। यहूदी उन वाचा सिद्धांतों के प्रति अवज्ञाकारी थे, और दौर इतिहास दिखाता है कि भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह द्वारा कही गई 70 वर्ष की बंधुआई उससे पहले के 490 वर्षों के विद्रोह का प्रतिनिधित्व करती थी। 490 वर्षों में यदि प्राचीन इज़राइल ने लेवी व्यवस्था 25 में निर्धारित वाचा के निर्देशों का पालन किया होता, तो उनमें कुल 70 ऐसे वर्ष होते जिनमें भूमि ने विश्राम किया होता। एक बाइबलीय वर्ष 360 दिनों का होता है, और 360 दिनों को 7 गुना से गुणा करने पर 2520 दिन होते हैं। 70 वर्ष भूमि के विश्राम से पूर्णतः जुड़ा है, जो 7 समय से भी पूर्णतः जुड़ा है। डैनियल 70 वर्षों की बंधुआई का परमेश्वर के पवित्र स्थान की शुद्धि से पहले वाले 23 वर्षों से संबंध को समझना चाहता था। अतः वो छाजोन दर्शन और मरेह दर्शन के संबंध को समझना चाहता था। उस संबंध को समझना असंभव है जब तक कि लेव्य व्यवस्था अध्याय 25 और 26 में भूमि के विश्राम को और यिर्मयाह द्वारा कही गई 70 वर्षों की बंधुआई को स्वीकार न किया जाए। यदि आप नहीं मानते कि 7 समय 2520 वर्षों की एक भविष्यद्वाणी कालावधि का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप स्वयं को उन लोगों में से बाहर कर लेते हैं जिन्हें अंतिम दिनों में डैनियल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। मिलेराइट मानते थे कि 7 समय एक समय भविष्यवाणी था, पर अब एडवेंटिज्म ऐसा नहीं मानता। डैनियल अन्य सभी भविष्यद्वक्ताओं की तरह दुनिया के अंत में परमेश्वर की प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है, और 70 वर्षों, 7 समय और 2300 वर्षों के बीच संबंध को समझने की उसकी इच्छा पर बहन वाइट की टिप्पणियां उस इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है जो अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा में होनी चाहिए, जैसा कि पिछले लेखों में कहा गया है, 1843 और 1850 के चार्टों पर दर्शाए गए कोई भी सत्य ऐसे नहीं हैं जिन्हें बहन व्हाइट की रचनाओं में प्रत्यक्ष बार बार समर्थन न मिला हो। मिलर के रत्न अंतिम दिनों के आधी रात के आह्वान में 10 गुना अधिक चमकेंगे और ऐसा करते हुए वे रत्न एडवेंटवाद की कुंवारी कन्याओं के लिए अंतिम परीक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे रत्न हबक्कुक की तालिकाओं पर प्रदर्शित आधारभूत सत्य है और वही रत्न उस संदूकची में थे जिसे मिलर के कमरे के बीचों बीच रखी मेज पर रखा गया था। आधारभूत परीक्षा ही अंतिम परीक्षा है, परंतु भविष्यवाणी की आत्मा का प्राधिकार भी ऐसा ही है। मिलर के स्वप्न में रत्नों के रूप में प्रतीकित किए गए इन आधारभूत सत्यों को अस्वीकार करना साथ ही साथ भविष्यवाणी की आत्मा को अस्वीकार करना है।
शैतान का बिल्कुल अंतिम धोखा ये होगा कि वो परमेश्वर की आत्मा की गवाही को अप्रभावी कर दे। जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग नाश हो जाते हैं। नीतवचन 28:18। शैतान सच्ची गवाही में परमेश्वर के शेष लोगों का विश्वास डगमगाने के लिए चतुराई से, विभिन्न तरीकों से और विभिन्न माध्यमों द्वारा काम करेगा। वो गुमराह करने के लिए मिथ्या दर्शन लाएगा और झूठ को सट्टे के साथ मिला देगा और लोगों में ऐसी घृणा उत्पन्न करेगा कि वे दर्शनों नाम की हर चीज को कट्टरता की एक किस्म समझें। परंतु ईमानदार आत्माएं झूठ और सत्य की तुलना करके उनके बीच भेद कर सकेंगी। चुने हुए संदेश, खंड 2:78।
हम अब 78 से रे से 1894 तक मिलर राइट्स के इतिहास में हुई ज्ञान वृद्धि पर विचार कर रहे हैं, पर हम ये भी पहचान रहे हैं कि यद्यपि मिलर राइट्स भविष्यवाणियों के अपने अनुप्रयोगों में सही थे, वे जिस इतिहास में उठे थे उसी ने उन्हें सीमित किया था। हम अब अंतिम दिनों में हैं और एडवेंटिज्म की अंतिम चौथी पीढ़ी में हैं। इस काल में एडवेंटिज्म परंपराओं और रीति रिवाजों, नकली रत्न की शिक्षाओं से इतना प्रभावित हो चुका है कि उसे अब ये भी नहीं पता कि आधारभूत सच्चाइयां क्या थीं। वे सच्चाइयां क्या हैं ये न जानना एडवेंटिज्म को उन सच्चाइयों के महत्व को समझने से रोकता है और उन सच्चाइयों की रक्षा और संरक्षण के लिए बार बार दिए गए आदेशों को अर्थहीन बना देता है। उलाई नदी के दर्शन की गैब्रियल द्वारा दी गई व्याख्या में आगे बढ़ने से पहले हम उन कुछ प्रासंगिक बिंदुओं पर विचार करेंगे जो मौलिक सत्यों और भविष्यवाणी की आत्मा के प्राधिकार से जुड़े हैं। आधुनिक धर्मशास्त्री ये तर्क देते हैं कि निम्नलिखित खंड बताता है कि बाइबल में समय से संबंधित सबसे लंबी भविष्यवाणी 2300 वर्षों की है।
मसीह के प्रथम आगमन के समय राज्य का सुसमाचार का प्रचार करने वाले शिष्यों के अनुभव का समकक्ष उन लोगों के अनुभव में पाया गया जिन्होंने उसके द्वितीय आगमन का संदेश सुनाया। जैसे शिष्य निकलकर ये प्रचार करते थे, समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट है, वैसे ही मिलर और उनके सहयोगियों ने घोषित किया कि बाइबल में दर्शाई गई सबसे लंबी और अंतिम भविष्यवाणी अविधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली थी कि न्याय निकट था और कि अनंत राज्य का आरंभ होने वाला था। समय के संबंध में शिष्यों का प्रचार दानियल 9:70 सप्ताह पर आधारित था। मिलर और उनके सहयोगियों द्वारा दिया गया संदेश दानियल 8:14 के 3300 दिनों की समाप्ति की घोषणा की थी, जिसका एक भाग 70 सप्ताह है। दोनों का प्रचार उसी महान भविष्यवाणी अवधि के अलग अलग अंशों की पूर्ति पर आधारित था। प्रथम शिष्यों की तरह विलियम मिलर और उनके सहयोगी स्वयं उस संदेश के महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाए जिसे वे लेकर चल रहे थे। कलीसिया में लंबे समय से स्थापित त्रुटियों ने उन्हें भविष्यवाणी के एक महत्वपूर्ण बिंदु की सही व्याख्या तक पहुंचने से रोका। अतएव यद्यपि उन्होंने वो संदेश प्रचार किया जिसे परमेश्वर ने संसार को देने के लिए उन्हें सौंपा था, तथापि उसके अर्थ के बारे में गलतफहमी के कारण उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। महान विवाद 358।
अंश कहता है, मिलर और उनके सहयोगियों ने घोषणा की कि बाइबल में प्रस्तुत सबसे लंबी और अंतिम भविष्य सूचक अवधि समाप्त होने को थी, और धर्मशास्त्री दावा करते हैं कि सबसे लंबी और अंतिम भविष्य सूचक अवधि 2300 वर्षों की है। वे आगे ये भी दावा करते हैं कि अंश में सिस्टर व्हाइट इसी की पहचान कर रही है, क्योंकि उनका कहना है वो सीधे 2300 वर्षों की अवधि को संबोधित कर रही हैं। वे 70 वर्षों और 2300 वर्षों की अवधि के किसी भी संबंध के प्रति अंधे हैं। वे उस प्रकाश के प्रति अंधे हैं जिसे दानियल समझने का प्रयास कर रहे थे। एलन व्हाइट एक मिलराइट थी और उन्हें 1843 के अग्रदूत चार्ट पर और 1850 के उस अग्रदूत चार्ट पर, जिसे F.D. निकोल्स ने प्रकाशित किया था, लिखे गए संदेशों का ज्ञान था। 1850 का चार्ट जिसे निकोल्स ने तैयार किया, उसी समय निकोल्स के घर में बनाया गया था जब जेम्स और एलन व्हाइट निकोल्स के साथ रह रहे थे। बाइबल में सबसे लंबी भविष्यवाणी की अवधि जो उन दोनों चार्टों पर दर्शाई गई है 2300 वर्ष नहीं है, वो लेव्य व्यवस्था 26 की 7 गुना है। ये कहना कि पिछले पाठांश में 3300 वर्षों को सबसे लंबी और अंतिम भविष्य सूचक अवधि के रूप में ईश्वरीय प्रेरणा से पहचाना गया है, सिस्टर व्हाइट की रचनाओं को आपस में विरोधाभासी बना देता है। यदि वो इस पाठांश के बारे में धर्मशास्त्रियों के दावे पर विश्वास करती थीं, तो जब वो 7 समय का समर्थन करने वालों चार्टों का अनुमोदन करती हैं, तो उसका क्या मतलब है?
मैंने देखा है कि 1843 का चार्ट प्रभु के हाथ द्वारा निर्देशित था और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, कि उसके अंक वैसे ही थे जैसे वो चाहता था, कि उसका हाथ उन अंकों में से कुछ में एक त्रुटि पर था और उसे ढांपे हुए था ताकि कोई उसे देख न सके जब तक उसका हाथ हटा न लिया गया। अर्ली राइटिंग्स 74।
जो अपनी परंपराओं और दंत कथाओं को कायम रखना चाहते हैं, वे ये तर्क दे सकते हैं कि 1843 के चार्ट पर प्रभु ने 7 काल की त्रुटि पर अपना हाथ रखकर उसे ढंक रखा था, जब तक कि बाद में किसी समय उन्होंने अपना हाथ हटा नहीं लिया। उस धारणा की समस्या ये है कि बहन व्हाइट ने ये बताया कि प्रभु ने गणनाओं से अपना हाथ कब हटाया। उनका हाथ 22 अक्टूबर 1894 से पहली निराशा के तुरंत बाद हटा लिया गया था। उस घटना की अपनी गवाही में उन्होंने उस गलती की पहचान की थी जिसका सुधार किया गया था, और ये स्पष्ट है कि वो गलती 7 काल नहीं थी।
वे विश्वास योग्य निराश लोग जो ये समझ नहीं पाए कि उनके प्रभु क्यों नहीं आए, अंधकार में नहीं छोड़े गए। फिर उनका मार्गदर्शन किया गया कि वे अपनी बाइबलों में भविष्यवाणी की अवधियों की खोज करें। गणाओं पर से प्रभु का हाथ हटा लिया गया और भूल स्पष्ट कर दी गई। उन्होंने देखा कि भविष्यवाणी की अवधियां 1884 तक पहुंचती हैं, और वही प्रमाण जो उन्होंने ये दिखाने के लिए प्रस्तुत किए थे कि भविष्यवाणी की अवधियां 1843 में समाप्त हो गई थीं, ये सिद्ध करते थे कि वे 1884 तक पहुंची होंगी। प्रारंभिक लेखन 37।
जब प्रभु का हाथ गणनाओं पर से हटा लिया गया और भूल स्पष्ट कर दी गई, तब उन्होंने ये पहचाना कि वही प्रमाण जो उन्होंने ये दिखाने के लिए प्रस्तुत किया था कि भविष्यवाणी के काल 1843 में समाप्त होते हैं, सिद्ध करता था कि वे 1844 में समाप्त होंगे। वे भविष्यवाणी के काल, जिन्हें आरंभ में 1843 में समाप्त होने वाला माना गया था, 1843 के चार्ट पर दर्शाए गए हैं, वही चार्ट जिसका उपयोग सभी 300 मिलरवादी उपदेशकों ने किया था। उस चार्ट पर जिन भविष्यवाणी के कालों को 1843 में समाप्त दिखाया गया था, वे थे दानियल अध्याय 8 पद 14 के 2300 वर्ष, लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 के 2520 वर्ष और दानियल अध्याय 12 के 1335 वर्ष। पहली निराशा के बाद प्रभु ने उस भूल पर से अपना हाथ हटा लिया, और तब मिलरवादियों ने पहचाना कि वही प्रमाण जिसने 1843 में भविष्यवाणी के कालों के समाप्त होने को दर्शाया था, वास्तव में सिद्ध करता था कि वे काल 1854 का समाप्त हुए। 1840 का चार्ट 1840 में तैयार किया गया था और जनवरी 1850 में बिक्री के लिए रखा गया। एलन व्हाइट ने दर्ज किया कि ये चार्ट हबक्कूक की पूर्ति भी था, जैसा कि उन्होंने 1843 के चार्ट के संबंध में भी दर्ज किया था। उस चार्ट ने सबसे लंबे भविष्य सूचक काल को लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 के 7 समय के रूप में भी दर्शाया।
मैंने देखा कि भाई निकोल्स द्वारा चार्ट के प्रकाशन में परमेश्वर था। मैंने देखा कि बाइबल में इस चार्ट की एक भविष्यवाणी थी, और यदि ये चार्ट परमेश्वर की प्रजा के लिए अभिप्रेत है, यदि ये एक के लिए पर्याप्त है तो दूसरे के लिए भी है, और यदि किसी एक को बड़े पैमाने पर चित्रित एक नए चार्ट की आवश्यकता थी तो सबको उसकी उतनी ही आवश्यकता है।
मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस वॉल्यूम 13 359।
ये कहना कि सिस्टर वाइक का ये संदर्भ कि मिलर राइट्स ने बाइबल में प्रस्तुत सबसे लंबी और अंतिम भविष्य सूचक अवधि शीघ्र समाप्त होने वाली है ये घोषणा की थी सही है क्योंकि उन्होंने वास्तव में ऐसा किया था। ये दावा करना कि सबसे लंबी भविष्य सूचक अवधि 2300 वर्ष है सिस्टर वाइट की गवाही को स्वयं उसके विरुद्ध और ऐतिहासिक अभिलेख के विरुद्ध खड़ा कर देता है। उस कल्पित कथा पर विश्वास करना झूठ पर विश्वास करना है और अंतिम दिनों में जो लोग झूठ पर विश्वास करना चुनते हैं वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे सत्य से प्रेम नहीं करते। यीशु ने क्रूस के कष्ट से गुजरने के लिए अपने आप को किसी प्रकार की दिव्य संज्ञाहरण से चमत्कारिक रूप से सुन्न नहीं किया। यीशु ने दिव्य पीड़ा के साथ दुख सहा जो उनकी किसी भी सृष्टि की सहन शक्ति से बहुत परे था। फिर भी मानव जाति उनकी छवि में रची गई थी और प्रेरणा ये बताती है कि मनुष्य को वैसे ही विजय पानी है जैसे उन्होंने पाई। क्रूस के कष्ट सहने में मसीह को समर्थ बनाने वाली बात एक ऐसा गुण था जो उनमें था और जो मनुष्य में भी है।
यीशु पर दृष्टि लगाए हुए जो हमारे विश्वास का आरंभ करता और सिद्ध करता है जिसने अपने आगे रखे हुए आनंद के लिए लज्जा की परवाह न करके क्रूस को सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठ गया है। इब्रानियों 12:1।
यीशु ने क्रूस के कष्टों को सहा क्योंकि उनके आगे एक लक्ष्य रखा गया था और हम उनके स्वरूप में रचे गए हैं और इस नाते हम ऐसे प्राणी हैं जो लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं। ये हमारी रचना का हिस्सा है। यदि हमें ये विश्वास दिला दिया गया है कि एडवेंटिज्म की नींव को समझना महत्वहीन है तो उसी काम को करने के लिए हमारे पास कोई प्रेरणा नहीं होगी। उस लाओदीकियाई अवस्था पर विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा जगाई जा सकने वाली एकमात्र दैवीय प्रेरणा सत्य से प्रेम है। सत्य के प्रति ये प्रेम उन आसान रीति रिवाजों और परंपराओं की उपलब्धता से परखा जाएगा जो हमारे कानों को गुदगुदाने के लिए बनाई गई हैं। यदि अपनी लाओदीकियाई आरामदेह स्थिति में हमारे भीतर स्वयं सत्य को समझने की इच्छा ही न हो तो हम नाश हो जाएंगे। आज एडवेंटिज्म की यही स्थिति है। दानियेल अंतिम दिनों में परमेश्वर की उस प्रजा का उदाहरण है जो भविष्यवाणी के वचन के माध्यम से 70 वर्षीय बंदीवाई और 2300 वर्षीय भविष्यवाणी के बीच का संबंध समझने का प्रयास कर रही है। 2300 वर्षीय भविष्यवाणी को सबसे लंबी और अंतिम भविष्य सूचक अवधि ठहराना एडवेंटवाद की आधारभूत सच्चाइयों को अस्वीकार करना है और साथ ही भविष्यवाणी की आत्मा के अधिकार को भी अस्वीकार करना है। ये कहना कि मिलरवादियों ने जब सबसे लंबी और अंतिम भविष्य सूचक अवधि प्रस्तुत की तब वो 2300 वर्षीय थी, ऐसा कहना ऐतिहासिक अभिलेखों को अस्वीकार करना है।
भविष्य के विषय में हमें किसी बात का भय करने की आवश्यकता नहीं है सिवाय इसके कि हम उस मार्ग को भूल जाएं जिसके द्वारा प्रभु ने हमारी अगुवाई की है और हमारे पूर्व इतिहास में उसकी शिक्षा को। लाइफ स्केचेस 196।
गब्रियल दानियल को मेरेह और छेजोन दोनों दर्शनों की समझ देने आया और उसने दानियल को ये निर्देश दिया कि वो इन दोनों दर्शनों को अपने मन में अलग अलग रखे। यद्यपि स्पष्ट था कि उनके बीच एक भविष्यवाणी संबंध है, इन दर्शनों में अध्याय 7 और 8 में बाइबल की भविष्यवाणी के राज्य शामिल थे जो अध्याय 2 में उन्हीं राज्यों की पुनरावृत्तिक और विस्तार थे। इसमें वो स्वर्गीय संवाद भी शामिल था जो एक दर्शन को परमेश्वर के पवित्र स्थान और उसकी प्रजा के रौंदे जाने के रूप में प्रस्तुत करता था और दूसरे दर्शन को प्रजा और पवित्र स्थान की पुनर्स्थापना के कार्य के रूप में। जब गैब्रियल ने वो व्याख्या प्रस्तुत की जो अंततः मिलराइट्स द्वारा घोषित संदेश का केंद्र बन गई तो दो दर्शनों के बीच एक संबंध विद्यमान था जिस पर उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो व्याख्या को मानसिक रूप से अलग करने के आदेश का पालन करते हैं। भेदों में से एक उन दो शब्दों द्वारा दर्शाया गया है जिन दोनों का अनुवाद डिटर्मिंड के रूप में किया गया है।
तेरे लोगों और तेरी पवित्र नगर पर 70 सप्ताह ठहराए गए हैं ताकि अपराध का अंत किया जाए और पापों का अंत किया जाए और अधर्म के लिए मेल मिलाप कराया जाए और सनातन धार्मिकता लाई जाए और दर्शन और भविष्यवाणी पर मुहर लगाई जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने और बनाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त राजकुमार तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। सड़क फिर से बनेगी और दीवार भी, वह भी संकटमय समयों में। और 62 सप्ताह के बाद अभिषिक्त काट डाला जाएगा, परंतु अपने लिए नहीं, और आने वाले राजकुमार की प्रजा नगर और पवित्र स्थान का नाश करेगी, और उसका अंत बाढ़ के साथ होगा। और युद्ध के अंत तक उजाड़ियां ठहराई गई हैं, और वह बहुतों के साथ 1 सप्ताह के लिए वाचा को दृढ़ करेगा, और 1 सप्ताह के बीच में वो बलि और भेंट को बंद कर देगा, और घृणित वस्तुओं के फैलाव के कारण वो इसे उजाड़ करेगा यहाँ तक कि अंत हो जाए, और जो ठहराया गया है वो उजाड़े हुए पर अंडेला जाएगा। दानियेल 9:24-27।
70 सप्ताह 490 वर्ष प्रजा और पवित्र नगर पर ठहराए गए हैं। ठहराए गए के रूप में अनुदित शब्द का अर्थ काट कर अलग किया गया है, और ये शब्द यहूदियों और यरूशलेम के लिए एक अवधि या परीक्षा काल का दिशाता है। ये उस विद्रोह की अवधि का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसने यरूशलेम के विनाश और 70 वर्षों के नियरवासन को जम दिया। तब 490 वर्षों की अवधि ठहराई गई, जिसकी शुरुआत 3रे आदेश से होती है। विद्रोह के प्रथम 490 वर्षों ने नबुकदनस्सर के 3 आक्रमणों, अंततः यरूशलेम के विनाश और वास्तविक बाबुल में वास्तविक इसराइल के 70 वर्षों के बिखराव और निर्वासन को जम दिया। पहले फरमान ने बंधुआई के अंत और यरूशलेम के पुनर्निर्माण के कार्य की शुरुआत को चिन्हित किया। 3रे फरमान ने 2300 वर्षों की शुरुआत को चिन्हित किया। पहले स्वर्गदूत के आगमन ने 1260 वर्षों तक आध्यात्मिक बाबुल में आध्यात्मिक इसराइल की बंधुआई के अंत को चिन्हित किया, और इसने 46 वर्षों की एक अवधि की शुरुआत को भी चिन्हित किया। जब मसीह ने मिलराइट्स का उपयोग किया ताकि वे बंधुआई से बाहर आएं और एक आध्यात्मिक मंदिर स्थापित करें, बद 26 और 27 में, जिसे 2 बार निर्धारित के रूप में अनुवादित किया गया है, वो शब्द चराज है और उसका अर्थ घाव देना तथा एक आदेश होता है। भविष्यवाणी में ये ठहराया गया था कि प्रथम रोष के अंत में पापाई सत्ता को एक घातक घाव लगेगा। यही शब्द दानियेल पुस्तक के अध्याय 11:36 में भी आता है।
और राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, वह स्वयं को बढ़ाएगा और हर एक देवता से ऊपर स्वयं को महान ठहराएगा, और देवताओं का परमेश्वर के विरुद्ध अद्भुत बातें कहेगा, और रोष का अंत हो जाने तक वो समृद्ध होता रहेगा, क्योंकि जो ठहराया गया है वही किया जाएगा। दानियेल 11:36।
36वें पद में द किंग से आशय पापाई सत्ता है। पापाई सत्ता इसत्तारा 9वें से लेकर उन्नति करती रही, जब उसे अपना घातक घाव लगा, तब पहली इंडिग्नेशन का बी अकॉम्प्लिश्ड होना था, क्योंकि उस इंडिग्नेशन के बी डन होने के लिए डिटर्मिंड डिक्रीड किया गया था। इसराइल के उत्तरी राज्य के विरुद्ध पहले कोप के अंत में, जो 733 ईसा पूर्व आरंभ हुआ और 1790 से लेकर 1790 से लेकर तक उसे घातक घाव लगाया था। इसराइल के उत्तरी राज्य के विरुद्ध में डिटर्मिन शब्द का अर्थ वूंड है।
और मैंने देखा कि उसके सिरों में से एक मानो मरणांतक रूप से घायल हुआ था, और उसकी घातक चोट भर गई, और समस्त जगत उस पशु के पीछे अचंभित होकर चल पड़ा। प्रकाशित वाक्य 13:3।
मिलराइटों की भविष्य सूचक रूप रेखा 2 उजाड़ने वाली शक्तियों, पहले पैगनवाद और उसके बाद पापाइयत पर आधारित थी। वे समझते थे कि ये दोनों शक्तियां पवित्र स्थान और सेना को रौंदने वाली थीं, जैसा कि दानियेल अध्याय 8:13 के दर्शन में दिखाया गया है।
तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते हुए सुना, और दूसरे पवित्र जन ने उस विशेष पवित्र जन से जो बोल रहा था कहा, नित्य बलिदान और उजाड़ डालने वाले उस अपराध तथा पवित्र स्थान और सेना दोनों के पांव तले रौंदे जाने के विषय में ये दर्शन कब तक रहेगा? दानियेल 8:13-13।
वापसी की उजाड़ने वाली सत्ता को 1260 वर्षों तक पवित्र स्थान और सेना को रौंदना था।
पर मंदिर के बाहर जो आंगन है उसे छोड़ दे और उसे ना माप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक पैरों तले रौंदेंगे, और मैं अपने दो गवाहों को अधिकार दूंगा, और वे टाट का वस्त्र पहने हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। प्रकाशित वाक्य 11:2-3।
27 ताशर नहीं में पहले प्रकोप के अंत में भविष्यवाणी में पोप तंत्र को घाव देने का निश्चय ठहराया गया था। दानियल अध्याय 9 में उस निश्चय को अंतिम दो पदों में प्रस्तुत किया गया है, और उन पदों में जो शब्द दो बार डिटर्मिन्ड के रूप में अनूदित है वो झाजौन दर्शन से संबंधित है, जबकि 24वें पद में डिटर्मिन्ड के रूप में अनूदित शब्द भिन्न इब्रानी शब्द है और मारे दर्शन से संबंधित है। अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हुए दानियल उन दोनों दर्शनों के परस्पर संबंध को समझने का प्रयास कर रहा था, जिन्हें गैब्रियल ने उसे मानसिक रूप से अलग रखने को कहा था। हम इस विषय को अगले लेख में जारी रखेंगे।
परमेश्वर हमें कोई नया संदेश नहीं दे रहा है, हमें उस संदेश का प्रचार करना है जिसने 1843 और 1844 में हमें अन्य कलीसियाओं में से बाहर निकालकर अलग किया था। रिव्यू एंड हेरल्ड, जनवरी 19, 1940।